अब राम राय तो माथे पर हाथ धरकर बैठ गया, हे भगवान यो महाराज जी धोती कुड़त्याला निरा जाट बता इसने महाराज जी के हरियो गरीबदास जी अरे तेरा गजब हो यो कहां से चला था 250 किलोमीटर आ गया और खोदा पहाड़ लकड़ी चुया यो किसा महाराज है। ऐसे महाराज होया करते हैं, बड़ा धोखा खाया भैया तो मैंने। ऐसे बैठा बैठा बेचारा संकल्प विकल्प कर रहा था और गरीबदास जी वहां स्नान करने लग गए, शिष्यों ने पानी ला दिया था और वो बाल्टी से स्नान करने लगे। स्नान करके स्नान क्या क्या स्नान धोती जो बांधते हैं ना हरियाणा में, या धोती बहुत लंबी हो है इतनी बड़ी इसकी कम से कम भी 4-5 12-13-15 फुट की होती है। इस सन बांध का इसका ऊपर इसी का एक हिस्सा बेल्ट रूप में बांध जा करते हैं। तो गरीबदास जी ने वह दूसरी धोती बदली जो नहाए थे वह खोल दी और वो धोती बांध करके और उसके ऊपर जो बेल्ट रूप में बांध जा करते हैं एक और कपड़ा उसी का एक सिरा, उसको यहां अड़बंद कहते हैं, अड़बंद हरियाणा के रोहतक जिले में। धोती बांध कर उसका ऊपर कह उसी का एक पल्ला बांधते हैं उसको अड़बंद कहते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा कि भाई झुमकरा आना कृपा एक बार मेरे पास। वो जो रामराय सरदार जी था गरीबदास जी ने उसका नाम भी नहीं पूछा था, तू कौन है कितना आया है। जब नो कहा कि रहा झुमकरा एक बार आना मेरे पास, तो वो खड़ा होकर पहुंच गया। भाई क्या कहेगा ये, हकान जी बोलो क्या बात है कि भाई मेरे चोट लग गई उंगली पे और मेरा हाथ काम ना करता, एक बार मेरे इस धोती ने के अड़बंद ने का गांठ ला दे इसको ऐसे करके और दो ये गांठ लगा दे। अब उस राम राय जी ने जो ही धोती शरीर के चारों तरफ से वो पल्ला घुमाया ऐसे होता था वो ऐसे इतना ऐसे कर लेते थे उसको और वो शरीर के चारों तरफ से ऐसे करके नू गांठ लाया कर नू गांठ लानी होती है भैया, गांठ ला फिर दूसरी ला। उसने जो ही गांठ लाई तो वह गांठ खुलकर जैसे नू गांठ लाई तो वह गांठ शरीर से निकल कर और धोती का लाग गया ऐसे शरीर के आर पार हो गए। अब राम राय जी ने देखा कदे तेरा धोखा लग गया हो कहीं और गांठ ठीक ना लगी उल्टी उल्टी तरफ लग गया, दोबारा फिर खोली दोबारा खोल कर उसने और फिर ऐसे किया नो करकर गांठ लान लग गया चारों तरफ के वह धोती का शरीर के चारों तरफ का निकाली वह धोती का उल्टी उसी का गांठ फिर तीसरी बार फिर किया। गरीब दा तो वो क्या सोच रहा था मन में कि यू भी मेरे के साथ जमींदार है हैं और ये लोग इसकी वैसे महिमा बना रहे होंगे, दो पीछे लालच उधार सुधार ले लेते होंगे इस करके इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई सानी काट कोई इसका चारा काटन लग रहा है, कोई कपड़े दो है कोई पानी लिया है। उसके मन में यह संकल्प विकल्प था कि संत सुंत के मैंने तो धोखे में आ गया। जब तीसरी बार भी उसने ऐसा किया जब गरीबदास जी कहने लगे रे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं बेटा या गांठ क्यों ना लगती तेरे तह। तब उसने ऊपर ने देखा क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे इष्ट रूप में मानते थे, तो ऊपर देखा तो विष्णु जी का रूप गरीबदास जी ने बना रखा था। ऐसा देखते ही चरणों में गिर गए, माफी मांगी हाथ जोड़े माफ कर दो हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। तब दूसरी बार देखा तो जोके तो वही किसान रूप खड़े थे। फिर उसने सोचा भाई तेरा कोई वैसे ही लगता है, धोखा हो गया होगा तुझे क्योंकि तू खुद इस विष्णु उपासक है इसलिए तेरी आस्था से ही तुझे इसका रूप ऐसा लगा होगा, चलो जो भी है अब इसे ज्ञान चर्चा करता हूं। तो उन्होंने ज्ञान चर्चा की, कहा कि मैं विष्णु जी का उपासक हूं, विष्णु से ऊपर मैं किसी शक्ति को नहीं मानता हूं और आपके विषय में मैंने ऐसे ऐसे आपका कोई शिष्य था उसे सुना था, आपके दर्शन करने में आया हूं। तब गरीबदास जी ने कहा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आ गए हो। तो उन्होंने पूरी डिटेल समझाई, सृष्टि रचना के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिठी है। तब उस झुमकरा ने कहा कि हे परमात्मा, ये जो ज्ञान जो आपने आज मुझे बताया है, ये तो आज तक किसी ने मुझे हमें नहीं बताया। तब गरीबदास जी ने कहा था, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व ज्ञान के विषय में कोई नहीं जानता, लोगों ने केवल पैसा कमाना और महिमा बनाना, बड़े बड़े आश्रम छाना, यही अपनी प्रभुता मान रखी है। सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद नहीं जानते ये लोग और ना ही ये बता सकते। इन्होंने तो माया इकट्ठी करना है, करना उद्देश्य मान रखा है और इसी के ऊपर ये नाच नच रहे हैं। फिर बताया, और सुन ले, इस तत्व ज्ञान के जानने वाला करोड़ संतों में नहीं मिलेगा। करोड़ ओ तेरी की, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा, अरबों में। अब करोड़ गुरुओं में तुझे इस मार्ग के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में की तो एक गर्क सुनो रहा झुमक रहा अरबों में। अब बताओ, गुरु किसे कहते हैं? जो क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु उसी को मानते हैं जो आध्यात्मिक भक्ति के बारे में ज्ञान बतावे। एक गांव में यदि 10,000 की आबादी है तो उसमें 5,000 गुरु पावेंगे। 5,000 गुरु कैसे पावेंगे? जैसे किसी के बालक का कोई दुख गड़बड़ हो रही है, छोटे बच्चे का, पहले तो सास बतावेगी कि बेबे थारे बहन तुम्हारे बेटी तुम्हारे जो है ना श्याम जी की पूजा है। फिर पड़ोसन आवेगी, बेबे इसका बारली का दिख है, बहन इसका बारली का, बारली माता का दिख है, वो बारली की भी कर देगी। फिर कहें इसका भीतरली का दिख है, वो भीतरली वाली बताने वाली तीसरी पावेगी। फिर चौथी आओगी, थर जोड़ वाले बाबा की भी पूजा है, वे उसकी भी एक चुरमे का पिंड दरिया करें। चौथी आओगी, ना उलट चौराहे पे एक तमाखू का पिंड दरिया करें, भूत पी कर जाएंगे उसने। तो इस तरह एक गांव में अगर 10,000 की आबादी है, 5,000 गुरु हैं, और फिर वो गांव में डेरे वाले नारे रह गए जो सुल्फा पाड़ हैं, बड़का ने बिगाड़े हैं, वह अलग रह गए। तो ऐसे परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के विषय में तत्व ज्ञान जानने वाला करोड़ों में भी नहीं पाओगा तुझे, अरबों में कोई गर्क। गर्क का अर्थ होता है पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान जानने वाला और पूरी भक्ति विधि और पूर्ण आशीर्वाद परमात्मा का और पूर्ण भक्ति विधि उसके पास हो, आदेश हो, नाम देना, ये सब प्रक्रिया जिसके पास है वो गर्क यानी सैचुरेटेड पूर्ण रूप से ज्ञान में परिपक्व, ऐसा तुझे अरबों अरबों गुरुओं में मिलेगा। अब जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12-15 तक विवरण दिया है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूं। काल भगवान गीता ज्ञान दाता कहता है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शिवजी से जो संहार हो रहा है, इनका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल अलग रहता है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है और वहीं से अपने रिमोट से इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को चलाता है। फिर कहा कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं और इनसे ऊपर नहीं उठते, ये त्रिगुणमयी मेरी माया जो है बड़ी खतरनाक है, और जो इन्हीं की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता जी जो है चारों वेदों का सारांश है और इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, क्योंकि किसी भी वस्तु को कितने, चारों वेद तो आपने देखा कितने मोटे मोटे हैं, ऐसे भारा भारा हैं कि इनको, फिर उनका एक छोटी सी इतनी बुक बनाना, ये छोटी सी बुक बनी, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है। तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति, यानी अर्थात जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों की से मिल होने वाले, तीनों भगवान से होने वाले लाभ के ऊपर ही टिका हुआ है, यानी इससे आगे जो किसी न मानते नहीं ना सुनते किसी की, जो जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बजते, मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब देखिएगा गीता जी, अब दास ये क्या बताना चाहता है कि अरबों में कोटों मध्य कोई नहीं रजो मकरा, इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी में भी लिखा है, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। उस 19वें श्लोक को समझने के लिए पहले आपको गीता जी के 12 से लेकर 15, 16, 17 और 18 ये श्लोक समझने होंगे। इसके बाद 7वें अध्याय का 19वें श्लोक में आपको पता चलेगा, जिसमें लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वत दे, और वासुदेव इति सहमात्मा सो दुर्लभ है। इस श्लोक को दो दो लाइन है, ऊपर और नीचे दो पंक्ति, दोनों का अलग अलग भाव है, उसके विषय में आपको पवित्र गीता जी का ज्ञान समझाता हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। ये पवित्र गीता जी और ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और इसमें ये 12 श्लोक देखिएगा, श्लोक नंबर 12, इसमें क्या लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये 13वां देखिएगा, गुणों के कार्य, 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार समुदाय, सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। क्योंकि ये 14वां श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 15वें में देखो, अब 15वें में देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी इतरगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु से अलग कोई पूजा करना नहीं चाहते, इन्हीं के ज्ञान के ऊपर आधारित है। क्या लिखा है? असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर राक्षस किए हुए मनुष्यों में नीच ओए होए दूषित कर्म करने वाले दुष्कृतिन मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमय माया के द्वारा हरा जा चुका है कि इन्हीं के द्वारा अस्थाई लाभों को सुनकर, जैसे श्री कृष्ण जी का सुना है कि सुदामा जी की महिमा सुनी है कि सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल खा करके उसका महल बना दिया, ना सुदामा रहा ना वो महल रहा और मोक्ष नहीं हो पाया। इस तरह और भी जो अन्य हम लाभ कथाएं सुनते हैं, कहते हैं इनसे आगे कोई चलने इससे आगे नहीं चलना चाहता, तो वो उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में कहा है कि माया के दो इस त्रिगुणमयी माया तीनों भगवानों के द्वारा मिलने वाले जो लाभ और इन्हीं के जाल में जो उलझा पड़ा है, जिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला मूर्ख वो मुझे बिना बजते गीता ज्ञान दाता कहता। इसी सिद्ध है कि तीनों गुण भी कोई भक्ति के ही हैं। इन तीनों गुणों से भिन्न ऊपर मुझे नहीं बजते। अब गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति कहां से स्टार्ट बताता है। अब पहले ये उदाहरण देता हूं कि तीनों गुणों की भक्ति और को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच क्यों कहा है। हम सिद्ध करना चाहता है ये दास कि जैसे तमोगुण भगवान शंकर तमोगुण की पूजा की थी रावण ने, तो उसने वो क्या उसने क्या उपलब्धि हुई? राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। भगवान शिव की साधना की थी अर्थात तमोगुण शिव की साधना की थी भस्मागिरी नाम के एक साधु ने, और उसने भगवान शिव की साध गिरी पुरी औघड़ नाथ कनपाड़े ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो भस्मागिरी जी ने भगवान शिव की साधना की, उनके उनके द्वार के सामने ऊपर को पैर करके सिरासन पर और नीचे को सिर करके 12 वर्ष तक उनके द्वार के सामने तपस्या की। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना से शंकर जी ने उस भस्मागिरी जी से पूछा कि बोल साधक क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने क्या मांगा कि भगवान आप अपने हाथ वाला कड़ा दे दो मुझे, भस्म कंडा। कि भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था कि उस कड़े को किसी के सिर पर रखकर नू कह दे भस्म तो व्यक्ति भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी जी को था और भस्मागिरी जी के मन में दोष था कि मैं शंकर जी को खत्म करके भस्म करके पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी के द्वार के सामने 12 वर्ष तपस्या की। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के पूछा कि क्या मांगता है साधक, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी जी ने वो कड़ा मांग लिया जो भस्म करने वाला, जिसको भस्म कंडा कहते थे। तो शिवजी ने, हाँ उससे पहले भस्मागिरी जी ने कहा कि आप वचनबद्ध होइए, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो भगवान शिवजी ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूं, मांग क्या मांगता है। तो कड़ा मांग लिया। भगवान शिवजी ने सोचा कभी साधु है, जंगल में रहता है, अपने राक्षसों से सो से बचाव के लिए मांग रहा होगा, उनको नहीं मालूम था कि ये तेरा दुश्मन बनेगा। ज्यों ही भस्मागिरी जी के हाथ में वो कड़ा आया और भस्मागिरी जी सीधा खड़ा हो गया, सिरासन त्याग दिया और फिर बोला होले शिव जी, होशियार अब तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब शिव जी ने सोचा देख सिर फिरा, ये क्या क्या किया इसने, ये के सोची भाई। अब देख लिया कि उसका तेवर बिल्कुल भयंकर था। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए अपनी जान बचा के, और भस्मागिरी पीछे पीछे भाग रहा है उसको शिव जी को मारने के लिए। रे तेरा गजब हो ये। पार्वती उधर से तो शिव की भगवान मान के पूजा करता है, पार्वती माता के तुल्य थी, और फिर उस नीच सोच ने उस भस्मागिरी जी के अंदर के गंदापन भर दिया। भगवान शिव जी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, भगवान शिव जी बहुत तेजी से चला जाता है। बीच में भगवान शिव विष्णु जी को जब ये आभास हुआ कि ये भस्मागिरी इसको मारेगा, तो पार्वती रूप बना के भगवान विष्णु जी उस भस्मागिरी के सामने आके प्रकट हो गया और कहा रुक जा भस्मागिरी। तब भस्मागिरी पार्वती के लिए तो सारा फंड कर ही रहा था, पार्वती रूप में देखकर भगवान विष्णु को वो वहीं फुल स्टॉप ला दिया, फुल ब्रेक लगा दिए भस्मागिरी ने, और भगवान शिवजी भागा चला जा रहा है। पार्वती रूप में विष्णु जी ने कहा कि आप डांस करके दिखाओ मुझे, तब मैं आपको पसंद करूंगी। भस्मागिरी ने कहा कि मैं तो साधु संत हूं, तपस्या की है, मैंने नाचना आदि नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखा दूंगी। पार्वती रूप में विष्णु जी बोले मैं तुझे डांस करना सिखा दूंगी, तने डांस करके दिखाना पड़ेगा। तब वो भस्मागिरी बोला, वो कहने लगा बोलो बताओ कैसे क्या नाचना है। तो पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इस हाथ को ऊपर ला। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था भस्म कंडा, जो सिर पे आ लिया भस्मागिरी के अपने सिर पे, जब भगवान विष्णु ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया, जल के राख हो गया। उस दिन के बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर, भस्मागिरी से भस्मा असुर बन गया राक्षस। अब तमोगुण की साधना करने से भस्मागिरी ने राक्षस कर्म किया, अपनी मां के तुल को, मां के तुल पार्वती को पत्नी बनाने की ठान ली। अब गीता जी का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति पर आधारित दूसरी बात को न मानने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे है, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी साधना भी ना करते, यानी ब्रह्म तक भी ना पहुंचते इनकी बुद्धि, ये नीचे वाले देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, आन उपासना अन्य देवताओं की ही करते रहते हैं, ब्रह्म तक मेरी साधना तक भी नहीं पहुंचते। फिर रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, काफी वर्षों तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रगट हुए, उससे क्या मांग लिया, मैं सुबह मरूं ना रात मरूं, दिन मरूं ना ऐसे मरूं, फलान मरूं, सांझ ना मरूं, किसी पशु त ना मरूं, पक्षी त नहीं मरूं, बारह मास में नहीं मरूं, तथास्तु कर दिया। अंत में क्या हुआ कि अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, अपनी पूजा करवाने लग गया और फिर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया उस राक्षस को नष्ट करने के लिए, तो राक्षस कहलाया। एक समय की बात है, हर की पैड़ी हरिद्वार में एक कुंभ का मेला भरा। उस कुंभ के मेले में स्नान करने का एक समय निश्चित किया जाता है, उसको पर्व भी बोलते हैं। वो पर्व भी लगनी थी सुबह, बहुत पहले की बात है, आज से 350 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय क्या करते हैं, जो स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में ये पहुंचते हैं सभी साधुजन जिनको संत कहते हैं, तो गिरी तो अपने टोल में पहुंच जाते, समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, पुरी अपने में, कनपाड़े न्यारे ओगड़ अलग, ओगड़ क्या उगाड़े नंगे नागा जिसको कहते हैं, गोरी अलग, उनकी अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, वैष्णव अलग होते हैं, इस प्रकार ये भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न संप्रदाय के संस्थाओं के अलग अलग साधु संत अलग अलग इकट्ठे होते हैं और फिर स्नान करने के लिए पूरा ग्रुप का ग्रुप चलता है। हर की पैड़ी पर जब पर भी लगनी थी, वो संत सबसे पहले नागा पहुंच गए, वो कति उगाड़े, वो कोई कपड़ा ना रखते शरीर पर, वो नगन और शरीर पर राख रूप लपेट लेते हैं। वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी को कवर कर लिया, स्नान करने के लिए खड़े हो गए। उधर से वैष्णो साधु जो विष्णु जी के उपासक थे, नागा साधु शिव जी के उपासक तमोगुण के, और विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु पीछे से आ गए। वो कहने लगे, भाई नागा महात्माओं, तुम पहले स्नान मत करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं। नागा बोले, नहीं हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हम तो घर त्याग रखा, हमने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखा, हम इतना त्याग किया हुआ है। नागे वैष्णो साधु बोले, बाहर स्नान नहीं करना तुमने गंगा में, पहले तुम नहाते ना धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फरड रपेट राखी राख बार मरो, पहले हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान करना तो रह गया लठम लठा, मुक्का मुक्का तलवार निकाल ली, फिर तो बड़ा बेगन हो गया। कहते 25,000 साधु कटका मर गए गंगा उस हर की पैड़ियों पर। 25,000 ये जिन हम संत कहां थे, जिनको हम साधु मानते थे, महात्मा कहते थे, वो ऐसे कटका मर गए, राक्षस रूप धारण कर लिया और गंगा का पानी लाल बना दिया, रक्त उसमें सौ बह बहकर चल पड़े। ओए होए, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तीर तुपक तलवार चलावे, दम जम घट जम धड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नर्ग पठावे हैं। ओए होए, कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, नसीदि गोपिने कटारी, तलवार तन्नाड़ काटे हैं, और जम दड़ जोर बधावे हैं, वहां तक डट कर लड़ाई करते हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में साध को आवे हैं, और उन ऐसे व्यक्तियों के जो दर्शन भी करने जाता है भोला भक्त, वो उनको भी नरक पठावे, यानी उनके पास साधना नहीं, ना कोई भक्ति की विधि, अंदर ये कुफर भरा हुआ है, बता के स्नान करना, गंगा के पानी कौन सा समाप्त हुआ था या दूषित हुआ था, उसमें गंदा नाला गेर दे तो भी गंगा जल जो का तो रहता, इतना ज्यादा पानी है, और वो स्नान कर लेते 2 मिनट पाछा नहा लो, जबकि बिजली पड़े थी के छोटे बड़े हुए थे, भक्ति से नाम ना ज्ञान नी, और वैराग धारण कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की चाह है आत्मा को जब से उससे बिछड़ी है, और उस चाह में वो फंस जाती है। इनके ये जाल बिछाए बैठे नकली संत, या के करे बेचारी आत्मा के तरफ मिट नहीं सकती जब तक भगवान नहीं मिलेगा, इसको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, भटकती रहती है। और इसका नाजायज फायदा ये नकली संत उठा रहे। इस प्रकार ये तो सिद्ध हो गया तीनों गुणों की भक्ति कर मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले किया करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी आदि की। अब यहां एक ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा कैसे है, सतगुण विष्णु कैसे है, तम गुण शिव जी कैसे है, नहीं तो ये जो उपासक है ब्रह्मा विष्णु महेश के ये बहुत नाराज हो जाएंगे। अक नहीं, तीनों गुण तो कोई और ही होते हैं। पुण्यात्माओं, ये ढेर सारे शास्त्र मैंने रखे हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने परमात्मा की अमृत वाणी पर, कबीर वाणी पर, सौसम वेद पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए, जनसाधारण को ये तथ्य समझाने के लिए कि आपके ही सदग्रंथों में ये लिखा है, जो ये दास बता रहा है, जो परमात्मा ने पहले हमें बताया हुआ है 600 साल पहले, ये आप ही के सदग्रंथों में लिखा है। ये सदग्रंथ इसलिए जरूरी हैं, जैसे एक अंधा रास्ते के रात्रि के समय, एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय लालटेन हाथ में लिए और चला जा रहा था अंधेरे में, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए 10-12-15 वर्ष के, उनको देखकर के अंधे उस सूरदास ने आवाज लगाई, रे बच्चों देखकर चलना बेटा, देखकर चलना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बच्चे उस अंधे के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा आप अंधे हो? कहां बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। ये लालटेन इसलिए ले रखी है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे धक्का ना मार दो, बुढ़ा आदमी पड़ जाए, कितना गिर का टांग टूट जा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गीता जी, पवित्र वेद और ये सभी पवित्र गीता जी, ये सदग्रंथ जी आपको इसलिए, ये मेरे अंधे मेरे लिए तो ये लालटेन है आपके लिए, क्योंकि जो भी गीता जी का उपासक है और जो शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक है, तो उसको देवी पुराण दिखा देता हूं, शिव पुराण दिखा देता हूं, वह लालटेन दिखा देता हूं, कहीं वो मेरी गिरना खसे, पहले ही लालटेन से अपने जिस सदग्रंथ को वो तथ्य सत्य मानता है उसी में देख ले, यह लिख रखी जो दास कह रहा है। ये मेरे लिए तो अनदयाली लालटेन है, मन जरूरत नहीं इन सदग्रंथों के दोबारा बार बार पढ़ने और पढ़ाने की, क्योंकि मैंने इनसे निष्कर्ष निकाल रखा है और वो हमारे भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था, वही मंत्र जो हम पहले जाप कर रहे थे जब तक हमने सदग्रंथों को देखा भी नहीं था, और वही मंत्र जो हमारे सदगुरु ने हमें दिया था, वही आज सब सदग्रंथों में विद्यमान पाया। अब आपको छोटा सा रहस्य और दिखाता हूं, जो सतनाम हम आपको देते हैं जिसमें दो अक्षर का होता है, इसमें एक ओम और दूसरा तत्, वो उपदेशी को पता चलेगा। तो यही जाप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने गरीबदास जी को दिया था, यही दो अक्षर का नाम सतनाम, और यही नाम आदरणीय गरीबदास साहिब को दिया, यही आदरणीय दादू साहिब को दिया, यही आदरणीय गुरु नानक देव जी को दिया। अब नानक साहिब के विषय में आपको थोड़ा रहस्य उद्घाटन करता हूं, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आपको मैं इतना तैयार कर दूं, सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूं कि आप लाल और लालड़ी की पहचान खुद करने लग जाओ। तो ऐसे ही एक ऐसा भक्त तैयार किए हैं, बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं जो लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करते हैं। अब गुरु नानक देव जी के पंथ में, जिसको सिख पंथ कहते हैं, अब बुद्धिमान बच्चे बहुत हैं, अब रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ज्ञान के सामने रूढ़िवाद नहीं चलता। तो ऐसे ही एक सरदार बच्चे को, बहुत से सरदार बच्चों ने भी उपदेश लिया है, तो अब वो खुद खोज कर रहे हैं पहले तो वो खोज करने लगते हैं कि जो संत जी बता रहे हैं सचमुच हमारे सदग्रंथों में लिखा कि नहीं लिखा, वो तो सत्य है, दास ने झूठ बोलने का कोई ठेका नहीं। तो फिर उन्होंने ही खुद ऐसी खोज की है कि एक समय ये है एक जन्म साखी, जन्म साखी भाई बाले वाली, ये है जन्म साखी ये, और इसमें आपको दिखाता हूं वो सतनाम का मंत्र ज्यो का त्यों, सतनाम जो दो अक्षर का होता है, ये देखिएगा, ये ऐसे ही दिखाऊंगा, वो पुरानी आदत पड़ी है, ये पुरानी बहुत है, ये है जन्म साखी, ये अंदर जिल्द में दबी हुई है, भाई बाल्य वाली, ये साफ नहीं दिखती है, भाई बाल्य वाली है यार, इसके चार सौ छियालीस पृष्ठ पे आपको दिखाता हूं कि एक समय बाला भाई बाला मर्दाना और गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। एक समय वो दरिया पर चल रहे थे, गुरु नानक जी दरिया पर ऐसे चल रहे थे जैसे थल पर चलते हैं, और पीछे पीछे बाला और मर्दाना भी चल रहे थे। तो उस समय के उपरांत मर्दाना जी गुरु नानक जी ने कहा कि तुम भाई मर्दाना मेरे पीछे पीछे आना और वाहे गुरु बोलते रहना, और वो स्वयं गुरु नानक जी स्वयं जो है सतनाम का जाप कर रहे थे, वो दिखाने के लिए, वैसे वास्तव में वो सांस से करना होता है लेकिन वो मुख से बोल रहे थे। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी जो है मंत्र जाप करते जा रहे हैं, कुछ और नाम जाप कर रहे हैं, और मैं भी क्यों ना वही जाप करूं। तो वो जब सतनाम का जो दो अक्षर नारे नारे ओम और दूसरा जो आपको बताया है जिनको उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है, तो उन दोनों नामों का जाप वो मर्दाना भी करने लग गया बोल बोल के, ओम और दूसरा वो मंत्र। तो जब वो बोल बोल कर ऐसे नाम जाप करने लगा तो वो डूबने लग गया। नानक जी गुरु नानक देव ने देखा कि रे मर्दाना तू क्या जाप कर रहा है, जी मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। तो नानक गुरु नानक जी ने कहा कि नहीं, गुरुजी की रीस गुरुजी की नकल नहीं करनी चाहिए, जो आदेश उसका पालन कीजिए, तू वाहे गुरु कह। तो मर्दाना वाहे गुरु करने लगा तो वो ठीक डूबने से बच गया और जल पर थल की तरह चलने लगा। और पुण्यात्मा देखना ये यहां से बात बिगड़ी है, इस पवित्र सिख धर्म में वास्तविक मंत्र छुप गया, वाहे गुरु की रट लगी। वो तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शब्द शक्ति से उसको बचाया था और एक उदाहरण देना चाहता था कि गुरु के वचन का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए उनको कहा तू वाहे गुरु बोल, मैंने जो कहा था उसको वो बोल। और वो चल रहा था गुरु नानक देव जी की शक्ति थे ना, वरदान्य किसी शक्ति थी, उदल के ऊपर चल रहा है गुरु नानक देव जी के वचन से वो चल रहा था पीछे पीछे। अब देखिएगा समुन्द्र दी साखी, ये है समुन्द्र की साखी, प्रश्न नंबर 446 ये है, ये देखो साखी समुद्र दी। अब पंजाबी मैंने मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं। यहां देखो यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर आ, मर्दाना किया सच्चे बादशाह जी, ऊपर देखना, मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी, असा समुंदर ता वेखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है ता गुरु जी किया चलो चलो भाई बाला, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू मर्दाना तुहानू मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मोटे जा मिटो जा अखी मिट के खोलियां ता समुंदर दे अखियां, अखी मिट के यानी बंद करके खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो। गुरु नानक जी कहते हैं चले आओ, मुखों वाही गुरु कर दे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे जैसे जैसे धरती ऊपर तुर दे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावन, ते पीछे बाला मर्दाना जावन। मर्दाने विचार कीती के गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये देखिए, गुरु नानक जी देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, ते लगा गोते खावन, ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए, तू मर्दाना वह आख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करण कहिण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा, ऐसे वर्तमान। ये आगे और दूसरा प्रकरण चल रहा। अब देखो पुण्यात्मा इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु नानक जी ने कहा था भाई तुम मेरा पीछे पीछे आ जाइयो और समुद्र पर के ऊपर चलोगे तो तुम वाहे गुरु बोलते रहना, क्योंकि गुरु नानक जी में सिद्धि थी, शक्ति थी भजन की भक्ति की, और उन चेलों को वो अपनी शक्ति से चला रहे थे, तो उन नालका ने सोचा कि गुरु जी तो दूसरा मंत्र जप सतनाम और तुम्हारे को कह दिया वाहे गुरु जप, तो वो वाहे गुरु छोड़ के वो लाग गए वो जबानी ऐसे बोलन ओम सोम। तो गुरु नानक जी ने तो देखा तो वो गोते डूबने लगी, क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी की वचन की शक्ति से उन्होंने समुद्र पे चलना था, उनमें कमाई थोड़ी थी, तो वो वाहे गुरु करने लग गए, वाहे गुरु छोड़ दिया, तो वो दूसरा मंत्र जाप करने डूब। फिर गुरु जी ने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा मेरे वचन का पालन करो। अब वो कहा था समुद्र के लिए, क्योंकि वो तो वचन उनका था और उनकी शक्ति से समुद्र पर चलना था। अब उस घटना ने देख कर बाला भी डर गया कि जय तन्ने वाहे गुरु ना कह तो भी बिगड़ेगी बात तेरी, तो फोर एवर के लिए उन्होंने वाहे गुरु करना शुरू कर दिया। और वाहे गुरु कौन है? जाखियेख कबीर की नानक कीती वाह, वा सिखों के गल फड़ी अब कौन छुटावे ता। जाखी वेख कबीर की, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री नानक साहब जी को बेई नदी पर मिले थे और वहां से उनको डूबने का बहाना करके दुनिया की दृष्टि में वो जल में गोता लगाकर बाहर नहीं आए, लेकिन अपनी शक्ति से परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। वहां कबीर परमेश्वर की झांकी नजारा सतलोक को देख करके जब वापस आए तो उसमें कहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वो तेरे की। ये तो वो ही परमात्मा सच्चा गुरु जो कबीर जो वहां सतलोक में है और ये यही वास्तव में गुरु है, इसी की कृपा से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा, यही सच्चा गुरु है। तो वह गुरु यानी एक प्रशंसा युक्त जो है शब्द है प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए। तो कहते हैं झांकी वे कबीर की नन कीती वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छटावे था। अब ये वाहे गुरु की रट लगा दी सिख भाइयों ने, लेकिन वो वाहेगुरु है कौन जिसकी तरफ नानक जी संकेत करते थे और स्वयं वो उस वास्तविक मंत्र सतनाम का जाप करते थे, लेकिन बाला और मर्दाना को उन्होंने उसकी विधि भी नहीं बताई थी जाप करने की, और वो उनको इसलिए वो मंत्र नहीं दिया क्योंकि वो योग्य नहीं हो पाए थे। इस प्रकार इस पूरे सिख धर्म से ये वास्तविक मंत्र गायब है जो सतनाम है, जो अभी आपको बोल के सुनाया था ये सतनाम है, लेकिन इसकी विधि उसी को बताऊंगा जो इसके योग्य हो जाएगा। विधि के बिना कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी से प्राप्त हुए बिना चाहे वैसे कोई जाप भी करता रहे कोई लाभ नहीं होता। तो इस प्रकार इस और थोड़ा संकेत भी देना आवश्यक होता है क्योंकि यहां तकरीबन उपदेशी भक्त हैं, भले ही उन्होंने प्रथम ही लिया हो द्वितीय वाले भी काफी हैं। तो इन सदग्रंथों से अपना दृढ़ विश्वास गणा हो जाएगा कि हम जो साधना करें वास्तव में सत्य है और ये अभी तक किसी के पास नहीं थी, लेकिन जिन संतों के नाम पर आज बड़े बड़े पंथ बने हुए उन महापुरुषों ने भी यही जाप किया था जिन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ है। जिन्होंने परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ वो अटकी बट पता नहीं क्या क्या मंत्र देते, कोई 5 मंत्र देता है, रणकार ज्योति निरंजन ओंकार सतनाम सोहन के बना रहे हैं, कोई अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरख पता नहीं क्या अपने मनमुखी नाम बना दिए। नहीं, केवल एक ही नाम है, एक ही तरह की विधि है, वही मंत्र सतनाम 2 मंत्र का होता है, सारनाम 3 मंत्र का होता है, ओम तत् सत, ओम तत् और ओम के बाद तत् सत, ये दोनों गुप्त होते हैं। तो अब ये जो ये जन्म साखी जो है एक सरदार बच्चे ने लाकर मुझे अभी एक हफ्ता पहले दी, कहने लगा गुरुदेव मैं देख रहा था जन्म साखी के, उसमें अवश्य कहीं ना कहीं मर्दान्या जी ने जरूर जिक्र किया होगा, गुरु नानक देव जी के पास कोई बात चली होगी, कोई रहस्य जरूर मिलेगा। कहना मैंने सारी छानी और ये उसने निशान ला कर दिया कि ये वही मंत्र गुरु जी जपते थे लेकिन अन्य को नहीं प्राप्त किया, नहीं दिया गया था, इस करके हमारे सिख समाज में यह वास्तविक मंत्र गायब है। गुरु नानक जी ने यही मंत्र जाप किया था, यह मेरा पक्का दृढ़ विश्वास हो गया। वो लड़के ने कहा, वो एक लेक्चरर है। तो पुण्यात्माओं, आपको ये दास इस योग बना देगा, इस सत्संग में आपको बुलाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको लाल और लालड़ी की पहचान करना सिखा दूं, फिर आप स्वयं फैसला करने लग जाओगे। एक 2 व्यापारी थे, उनमें छोटा भाई जो था उसकी मृत्यु होगी, उसके 2 पुत्र थे, तो उस छोटे के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा तुम अपने ताऊजी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको अपने व्यवसाय में पार्टनर बना ले, आपको अपना पार्टनर बना ले और ले बेटा मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं इनको ले जाओ। अब एक छोटे कपड़े में बांध रखे थे इतने सारे लाल, वो अपने बच्चों को दे दिए और जा बेटा अपने ताऊजी के पास जाओ, उनको कहो कि हमारा भी हिस्सा कर लो ताऊजी, हम अभी बच्चे हैं, हमें कारोबार का ज्ञान नहीं है और पैसे भी हमारे पास नहीं है, और ये लाल दे देना कि इन लालों को रख लो, इनको गिरवी रख करके किसी के उधार रख करके यानी किसी के यहां रख के इनके पैसे ले लेना, काम चला लेना, फिर हम अपने लालों को छुड़वा लेंगे जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे। अब माताजी के कहे अनुसार वो दोनों बच्चे माताजी के मां के द्वारा दिए हुए वो लालों की गठड़ी लेकर पोटली और पहुंच गए ताऊ जी के पास। प्रणाम किया, ताऊ जी हमें कारोबार यानी बिजनेस के बारे में ज्ञान नहीं है, मेरी मां ने कहा कि आप हम आपके साथ पार्टनरशिप में कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। और ताऊ ने कहा कि आ जाओ बेटा, ताऊ यानी पिता का बड़े भाई ने कहा, तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, ये तो कोई मैं तो खुद सोच रहा था कि बच्चों का कोई रहा नहीं कमाने का साधन, मैं तो स्वयं आपको कहने वाला था, आपने कह दिया और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो उन बच्चों ने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये मेरी मां ने लाल दिए हैं, इनको आप रख लीजिए, आवश्यकता हो वहां गिरवी रख देना यानी किसी के रहन रख देना, बाद में छुड़वा लेंगे। उस सेठ ने वो खोल के देखी पोटली गठड़ी, सेठ समझदार था, मेरे जैसा नहीं था कि सीधा कह दे तो खराब है, वो समझदार था, उसने उल्टी वापस गांठ बांध कह बच्चों से कह दिया बेटा इन्हें अच्छी तरह रख देना, तेरी मां को कह दे संभाल कर रख लेगी, अभी हम चलेंगे दूसरे प्रांतों में, वहां मेरी उधार चलती है, उधार पे माल ले आवांगे और आके फिर इन लालों को ले लेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर वापस आके गिरवी रख के इनके काम चला लेंगे। तो उन बच्चों ने जैसे भी बड़े अंकल ने कहा था, ताऊ जी ने कहा था, उसी प्रकार अपनी मां से आकर कह दिया माताजी ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, इन लालों को आप अच्छी तरह संभाल कर रखना, हम विदेश जा रहे हैं, दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरूरत पड़ी तो हम इनको ले लेंगे। माताजी ने कहा ठीक है बेटा संभाल कर रख दूंगी, आते ही ले लेना, नू के नू पाओगे। अब सेठ जी ने क्या किया, उन दोनों अपने भतीजों को साथ लेकर गए, उन बच्चों को वहां व्यवसाय की पूरी क्रिया समझाई, उनके हाथों से सामान का सौदा करवाया और एक दिन कहा ले बेटा, उस ताऊ जी ने कहा अपने भाई के बच्चों को भतीजों को कि जाओ बेटा जिस सेठ से हमने 50,000 का सामान लिया है उनको ये लाल दे देना और उनको कहना कि ये लाल रख ले सेठ जी, हम वापस आएंगे तेरे पैसे दे जाऊंगे, अपने लाल को वापस ले लेंगे। दोनों बच्चे वो भतीजे गए सेठ, जिस सेठ से 50,000 का सामान खरीदा था उसको जाकर कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने कहा है आप ये लाल रख लो, गिरवी रख लो यानी रहन रख लो, हम वापस आएंगे तो अपना लाल छुड़वा लेंगे, तेरे को पैसे दे देंगे। अब उस सेठ ने जौहरी बुलवाया, जौहरी होता है एक पार्क उसको जांच करने वाला, लाल और खोटे और खरे की, लाल है या ये खोटा है या सही है, ये ठीक है या गलत है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ऐसी जांच करने वाला एक जौहरी कहलाता है, वो साथी होता है, वो कुछ पैसे लेता है महीने के सेठों से। तो लाल वो जौहरी आया, सेठ ने कहा कि देखना भाई ये लाल कैसा है, तो जौहरी ने कहा ये तो लाल नहीं है सेठ जी, लालड़ी है, लालड़ी तो 100 रुपये की भी नहीं होती और लाल तो 9,00,000 रुपए का होता है। तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा रे तुम्हारे ताऊ जी ऐसे आदमी तो नहीं लगते थे मुझे, पर आज तो उन्होंने धोखा करने की चेष्टा की मेरे साथ, उसने गली में मारा फेंक कर वो लाल और कहने लगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या उनसे तुम्हारे कपड़े उतारूं था, ये मुझे धोखा भी क्यों दिया तेरे ताऊ जी ने, ये तो लाल नहीं है लालड़ी है, लालड़ी 100 रुपए की भी नहीं, लाल तो 9 लाख रुपए का होता। सेठ ने 2-4 डांट मारी। अब दोनों बच्चों का मुंह उतर गया कि भैया बात बनी कैसे। उस लालड़ी को उठाकर जो गली में फेंक दी गई थी वो लाल उठाकर ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी को पता था पहले इनके लाख के बनेगी, उसने जानकर किया था यो काम कि जब तक इनका झटका नहीं लगेगा ये परख ढंग से नहीं कर पाएंगे। आकर कहने लगे ताऊ जी वो सेठ है ना वो बड़ा बदतमीज आदमी है, वो हमारे को धोखेबाज कहता है। सेठ ताऊ जी हमारा लाल भी उसने लालड़ी बता दिया और गली में फेंक दिया, पता नहीं एक आदमी बुलाया था बाहर से, उसने कह दिया ये लाल को नहीं और उसने बाहर फेंक दिया गली में, ताऊ जी हमारी तो इज्जत तार ली। तब वो सेठ ने देखा ओहो अरे बेटा अरे मैंने तो लाल तो इस साइड में रखा था सिर के सिरहाने पर, इधर तो बेटा सचमुच ये लालड़ी रखी थी। वो सेठ का दोष नहीं है बेटा, वो ठीक कह रहा था, वो जो व्यक्ति बुलाया था वो जोरी था, वो परख करता है जांच करता है खोटे और खरे की, वो डुप्लीकेट ओरिजिनल की पहचान जानता है बेटा, उसने सच्चा कहा यह तो लालड़ी थी। वो लाल और लालड़ी उस ताऊ जी ने उनके सामने रखी। अरे बेटा यू था वो लाल थे भाई, मेरे से धोखा हो गया पुत्र, दोबारा जाओ और जाओ सेठ जी से कहो कि हमारा ताऊ जी ऐसा नहीं है, मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, ये लाल कहीं और रखा था, धोखे से लालड़ी दे दी गई। तो वो दोनों बच्चे कूदते हुए फिर गए, जाकर कहा सेठ जी हमारा ताऊ जी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये देखो मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, ये लाल है, ये वो लालड़ी थी, वो धोखे से दूसरी जगह रखी थी, उठा के दे दी गई, ये देखो जांच करवा लो अपने उससे। तो वो जोरी बुलाया सेठ ने फिर दोबारा, जोरी ना कर देखते ही उसका लगा कि वो जो भी टेस्टिंग करता था कहने लगे हाँ ये है लाल भाई, ये है लाल खरा है बिल्कुल। तब वो सेठ जी कहता है देख बच्चों देखो देख ये होता लाल, लठा रहे थे लालड़ी। अब उन बच्चों को वो ऐसा झटका लगा लाल और लालड़ी पे, पक्की दृष्टि डटगी कि ये लाल होता ये ऐसा लालड़ी होती। अब वो सेठ के बच्चे सेठ और वो दोनों भतीजों को लेकर गांव में अपने शहर आया, शहर आकर के कहा कि बेटा जाओ तुम्हारी मां से वो लाल ले आओ, पैसा उधार ज्यादा होगी है एक आधे लाल को उनमें से रख देंगे गिरवी, किसी को दे देंगे फिर अपने पैसे देकर छुड़वा लेंगे। तो दोनों बच्चे घर गए, भागे भागे गए, जाते कहा मां माता जी माता मां, उन्हें कहा बेटा आगे तुम आ जाओ रोटी रोटी खाओ दूध पी लो। वो बच्चे बोले नहीं पीछे रोटी खाएंगे माता जी, पहले वो लाल दे कहां रखे हैं, ताऊ जी के ऊपर बहुत वो जो है ना कर्ज बन गया है ऋण हो गया है, और वो रख के लालों को कुछ कर्ज हल्का करेंगे। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे मैंने तो, वह पोटली माँ ने उठा के बच्चा तो ही दे दी। अब उन बच्चों को वो ये बात खटक रही थी देखते न लाल है कि लालड़ी, कहीं ताऊ जी के पास जाके फिर बात बिगड़े, उस सेठ के पास जावा तो कहीं फिर वो दूसरा सेठ भी नहीं कहे तुम तो लालड़ी ले रहे हो लाल को नहीं। तो जो ही उन्होंने वो पोटली खोली बच्चा ने वो सारी ये लालड़ी थी, वो माँ जो गिठड़ी बांधे बैठी थी पोटली बांध के दाब रही थी जमीन में वो सारी ही लालड़ी थी, लाल नहीं थे। अब उन बच्चों ने स्वयं परख कर दी, न बोले माँ आप तो बिल्कुल भोली भाली हो, आपको लाल और लालड़ी की पहचान नहीं, ये लाल नहीं है माँ तो सारी लालड़ी है। तो माता जी बोली बेटा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैंने सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे लाल होंगे। अब वो दोनों बच्चे उन लालड़ियों को मां की पोटड़ी को वहीं पटक गए और ताऊ जी के पास गए। ताऊ जी से बोले ताऊ जी हमारी माता जी है ना वो भोली भाली है, ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो सारी लालड़ी थी मां के पास। जब वो सेठ कहता है बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम गिठड़ी बांध के मेरे पास लाए थे, मुझे भी मालूम था ये लालड़ी है, यदि मैं उस दिन उनको लालड़ी बता देता तो तेरी मां भी नो कहती, मेरा पति मर गया हमारे तो लालों को भी आज वो ताऊ जी लालड़ी बता रहा है, तेरी मां का कंधे पे टा नहीं ब्रो। अरे बेटा मुझे मैंने तुम्हारे को इतना प्यार कर दिया कि तुम स्वयं ही परख कर ली लाल और लालड़ी की, तेरी माँ के सामने तुमने उसको फैसला कर दिया कि लाल नहीं है ये लालड़ी है। तो पुण्यात्माओं आपको ऐसा प्यार कर देगा ये दास, चाहे को किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, कि वह स्वयं परख करने लग जाएगा सत्य और असत्य की, वो तुरंत त्याग देगा उस लालड़ी की गिठड़ी ने और लाल को स्वीकार कर देगा।